हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। स्वीटी ने जिसकी तरफ देखते हुए ये बात बोली और जिस शख्स ने उसे सीढ़ियों से गिरने से बचाया था वो और कोई नहीं विवान था, और अभी सीढ़ी पर खड़े ही वो उससे सवाल जवाब कर रही है। जल्दी आ गया तो क्या मैं वापस चला जाऊं? और तुम तो इतना ज़्यादा सरप्राइज हो रही हो जैसे कि मैं बिना इनवाइट के यहाँ पर आ गया हूँ। विवान ने मुंह बनाकर स्वीटी की बात का जवाब दिया, और उसके बाद के जवाब में स्वीटी कुछ भी बोल पाती उससे पहले ही वहाँ हॉल की सारी लाइट्स ऑफ हो गई, और फिर एकदम हल्की सी सफ़ेद रोशनी वहाँ पूरे हॉल में थी। ये क्या हुआ? लाइट ऑफ होते ही स्वीटी एकदम से बोली, तो विवान ने उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे क्या पूछ रही हो, मैं गेस्ट हूँ, बट तुम तो होस्ट हो, तुम कुछ बताओ। मैं भी गेस्ट ही हूँ, बस अभी आधे घंटे पहले ही तो आई हूँ, सब कुछ भैया भाभी ने खुद ही ऑर्गेनाइज़ किया है, और बाकी इवेंट ऑर्गेनाइज़र ने, शायद कुछ स्पेशल होगा, स्वीटी ने विवान की बात का जवाब दिया। उसकी बात पर विवान बोला, चलो नीचे चलकर देखते हैं, ध्यान से उतरना। वहाँ सीढ़ियों पर अभी भी उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं थी, इसलिए विवान ने अपना हाथ आगे किया और स्वीटी की लॉन्ग हेयर वाली फैली स्कर्ट और 5 इंचेस की हील में उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा थे, इसलिए उसने भी बिना कोई बहस किए विवान का हाथ पकड़ लिया और सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ नीचे हॉल में आई और सभी के बीच आकर खड़ी हो गई। तभी एक तेज़ येलो कलर की राउंड फ्लैशलाइट सीढ़ियों पर सबसे ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाली जगह पर पड़ी, और उधर ही नज़र उठाकर सबने देखा तो वहाँ पर आदित्य और सुनैना एक साथ खड़े एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहते हैं, खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। उस तरफ लाइट ऑन होते ही सारा फोकस उन दोनों पर ही हुआ, और वहाँ पर खड़े सारे लोग नज़र उठाकर उस तरफ ही देखने लगे। वो सारा इंतज़ाम आदित्य और सुनैना की एंट्री के लिए किया गया था, और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और एक दूसरे की तरफ ही देख रहे हैं। कहते हैं, खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने, हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तू हम सफ़र है, फिर क्या फ़िक्र है, जीने की वजह ही यही है, मरना इसी के लिए। कहते हैं, खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। एक दूसरे की आंखों में खोए हुए और एक दूसरे का हाथ थामे आदित्य सुनैना सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं, और उनकी एंट्री पर लोगों ने खुश होकर तालियां बजाई, और नैना जो वहां पर सारे लोगों के बीच खगी थी उसने भी अक्षत की बाजू को कसकर पकड़ लिया और बोली, कितने सुंदर लग रहे हैं ना वो दोनों एक साथ, बस किसी की नज़र ना लगे उन्हें कभी। इतना बोलते हुए वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई, और अनय भी मनस्वी और अंकित के साथ वहाँ पर पार्टी में आ गया है, और अंकित भी उन लोगों के साथ ही है क्योंकि वो बॉडीगार्ड नहीं बल्कि एक गेस्ट की तरह उन दोनों के साथ वहाँ पर पार्टी में आया है, जिससे कि वो मनस्वी के ज़्यादा करीब रह पाए और उसे प्रोटेक्ट कर पाए। अनय भी उन दोनों आदित्य सुनैना को साथ देखकर खुश है, और उन्हें साथ में अडोर करते हुए वो भी ताली बजा रहा है, लेकिन मनस्वी अपने साथ खड़े अनय को ही देख रही है। सभी लोगों की तालियां की आवाज़ सुनकर आदित्य और सुनैना ने एक दूसरे के चेहरे से नज़र हटाकर सामने की तरफ देखा, और सुनैना ने इस वक्त बहुत ही प्यारा रेड कलर का नेट का गाउन पहना हुआ है जिस पर बहुत ही खूबसूरत सिल्वर और गोल्डन स्टोन का वर्क है, और नीचे बहुत ही ज़्यादा घेर है। इसके अलावा उसके बाल खुले हुए हैं, और सर पर उसने राउंड सिल्वर कलर का टियारा पहना हुआ है, और उसके बालों में छोटे छोटे से आर्टिफिशियल रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं, और गले में रेड कलर का रूबी पेंडेंट और उसी से मैचिंग इयररिंग्स भी सुनैना ने पहने हैं। दूसरी तरफ आदित्य का लुक भी आज बाकी दिनों से बहुत ही ज़्यादा अलग है। उसने डार्क रेड कलर की शेरवानी, राउंड नेक वाला कोट सूट पहना हुआ है, और उसकी पैंट ब्लैक कलर की है, और ऊपर की शेरवानी डार्क मरून रेड कलर की है, तो उन दोनों का भी एक तरफ से मैचिंग कपल ड्रेस है जो कि सुनैना ने ही दोनों के लिए सिलेक्ट किया था। आदित्य तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी पहन सकता है। इसके अलावा वहाँ पर मीडिया भी आई हुई है, और वो सारे ही सुनैना आदित्य को साथ में देखकर जल्दी जल्दी उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगे। सुनैना को तो सारे लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन आदित्य का चेहरा उन सब के लिए एकदम नया था, और सिंघानिया इंडस्ट्रीज़ को संभालने वाला छिपा हुआ मिस्टीरियस फेस आज सबके कैमरे में कैद हो गया था। आदित्य नीचे उतर कर आया, और वो किसी भी मेहमान से कुछ भी बात कर पाता उससे पहले ही नदीम आया, और उसने धीरे से आदित्य के कान में कुछ कहा जिससे आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, और फिर वो सुनैना से बोला, सोना तुम यहाँ पर ही रुको, मैं बस अभी एक मिनट में आता हूँ। आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना ने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन कहाँ जा रहे हो बताओ तो? कहीं नहीं, बस यहीं स्टेज तक। ये मीडिया के सवालों के जवाब भी तो देने हैं ना आखिर। अभी हमने प्रॉपर अनाउंसमेंट तो की नहीं है, तो ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा ना छाते बस इसलिए। आदित्य ने सुनैना को ये बात बताई और उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सुनैना ने पहले उसके चेहरे की तरफ देखा और उसका हाथ नहीं छोड़ा। सुनैना के हाथ न छोड़ने पर आदित्य उसे समझाते हुए बोला, क्या कर रही हो सोना, ये बच्चों जैसी जिद, मैं बस यहाँ सामने ही तो जा रहा हूँ, एक मिनट रुको ना, या फिर नैना के पास चली जाओ, जब तक उससे मिल लो। उन सबसे मिलने के लिए अभी बहुत टाइम है और मैं तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगी। जो कुछ भी है, मैंने बोला था ना, सबका सामना हम दोनों साथ में ही करेंगे, तो फिर चाहे मीडिया हो या लोग, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ आदि। सुनैना ने बहुत ही मजबूती से ये बात कही तो आदित्य उसकी बात सुनकर तसल्ली से मुस्कुराया और उसने भी सुनैना के हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए एकदम कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसी तरह से उसका हाथ पकड़े हुए वो स्टेज की तरफ बढ़ा। सुनैना भी उसके साथ ही है। वहां पर मेहमान में सुनैना ने आदित्य के सारे रिलेटिव्स को भी बुलाया हुआ है, इसके अलावा बिजनेस पार्टनर और जितने भी लोगों को वो नदीम, शिवानी और रवि की मदद से इनवाइट कर सकती थी, उन सबको उसने वहां पर इनवाइट किया हुआ है, जिसमें कुछ लोग शायद उनके बिजनेस राइवल भी है। लेकिन सुनैना चाहती थी कि आज वहां पर उनकी शादी का और जो भी अनाउंसमेंट हो रहा है वो सबके सामने हो और सबको एक बार में ही ये पता चल जाए, जिससे कि आदित्य को बाद में ऐसा कुछ ना फेस करना पड़े जिसकी वजह से उसकी एंजाइटी बढ़ जाए या उसे कोई प्रॉब्लम हो। मीडिया वहां पर एक साइड में बैठी हुई थी, स्टेज के लेफ्ट साइड पर कुछ 15-20 मीडिया के लोग बैठे हुए थे, क्योंकि इससे ज्यादा लोगों को वहां पर आने की परमिशन सिक्योरिटी गार्ड्स ने नहीं दी थी। स्टेज पर एक आदमी माइक लेकर खड़ा था और वही जो आदित्य सुनैना की एंट्री से लेकर अब तक सारा काम देख रहा था। आदित्य सुनैना के मीडिया की तरफ बढ़ते ही उसने अनाउंसमेंट करते हुए कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, बस अभी छोटे से मीडिया इंटरव्यू के बाद आप सभी से मिलते हैं, जब तक आप पार्टी एंजॉय करिए।
एनिवर्सरी पार्टी पर मीडिया इंटरव्यू, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा मैम? अंकित ने मनस्वी के काफी नजदीक आकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। तो मनस्वी उसकी इस बात का कोई भी जवाब दे पाती उससे पहले ही अनय मनस्वी के पास आकर खड़ा हुआ और उसके कमर पर अपना हाथ रख के उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, तुम थक गई होगी ना, कितनी देर से खड़ी हो, चलो हम उधर सामने चलकर बैठते हैं, अभी पता चल जाएगा क्यों हो रहा है इंटरव्यू। इतना बोलकर उसने डायरेक्टली अंकित की तरफ देखा, क्योंकि मनस्वी की तरफ से वो उसके सवाल का जवाब भी दे रहा है। तो फिर मनस्वी ने अंकित की तरफ सिर्फ एक नज़र देखा और कुछ नहीं बोली, क्योंकि वो तो यही चाहती है कि अनय का पूरा अटेंशन उस पर ही रहे, और अभी जब वो उसे अटेंशन दे रहा है तो मनस्वी किसी भी कीमत पर वो मौका खोना नहीं चाहती, इसलिए वो तुरंत अनय के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसके साथ वहां से उस साइड पर चली गई और अंकित उन दोनों के पीछे वहां पर ही हाथ मलता हुआ खड़ा रह गया। अंकित मनस्वी को पिछले 2 सालों से पसंद करता है और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि मनस्वी असल में शादीशुदा है, और उसे बस इतना पता था कि उसकी किसी से डील वाली शादी हुई है और वो उससे प्यार नहीं करती, इसीलिए किसी ने भी उन दोनों को एक साथ नहीं देखा। इसके अलावा अंकित ज्यादातर वक्त उसके साथ रहता था और उसे खुद भी नहीं पता चला वो कब मनस्वी को इतना पसंद करने लगा, और अब वो मनस्वी को किसी के साथ नहीं देख पाता, फिर वो चाहे उसका पति ही क्यों ना हो, इसलिए उसके आसपास रहने के बहाने ढूंढता रहता है। नैना, तुम्हें कुछ पता है क्या इस इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू की बात सुनते ही अक्षत ने नैना की तरफ देखते हुए उससे पूछा, तो नैना ने भी धीरे से नहीं में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। विवान और स्वीटी एक साथ ही वहां पर खड़े हुए थे और स्वीटी को वहां पर देखते हुए अरुण भी उसकी तरफ आया। उसने विवान पर इतना ध्यान नहीं दिया और स्वीटी के पीछे आकर खड़े होते हुए धीरे से उसके कान में कहा, बहुत सुंदर लग रही हो, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तुम पर से। स्वीटी अरुण की आवाज पहचानती है, लेकिन फिर भी ऐसे एकदम अचानक से उसके कान के पास आकर अरुण ने ये बात बोली तो वो एकदम ही चौंक गई और पीछे मुड़कर देखते हुए बोली, तुम हो अरुण, मुझे डरा ही दिया तुमने तो, मुझे लगा कौन है जिसे मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, और किसी की जरूरत है क्या तुम्हें मेरे होते हुए? अरुण ने शरारत से मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसकी इस तरह से मुस्कुराने पर स्वीटी कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसने एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहा, बिहेव योरसेल्फ अरुण, तुम्हारे पेरेंट्स भी यहीं पर ही है ना, और अपनी बहन की एनिवर्सरी में आए हो या फिर फ्लर्ट करने? ये बताओ, मेरा प्यार तुम्हें फ्लर्ट क्यों लगता है? इतनी बार बोल चुका हूँ कितना सीरियस हूँ मैं तुम्हें लेकर, लेकिन तुम हो कि? अरुण थोड़ा सा नाराज होते हुए बोला। विवान भी वहां पर साइड में ही खड़ा था और इस तरह से उन दोनों को बातें करते हुए नोटिस करके उसने स्वीटी की तरफ देखते हुए पूछा, एनी प्रॉब्लम? उसके इस तरह से पूछने पर स्वीटी ने जल्दी से नहीं में अपना सिर हिलाया, लेकिन अरुण विवान की तरफ घूर कर देखने लगा। क्रमशः